हरे कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स नंबर 57। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र और आध्यात्मिक शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यः सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। शब्दों का अर्थ देखिए। यह मीन्स जो, सर्वत्र सभी जगह, अनभिस्नेह यानी स्नेह शून्य, स्नेह अनभिस्नेह माना जिसको किसी भी चीज में ज्यादा रुचि नहीं हो, स्नेह शून्य। तत्तत् प्राप्य शुभ आशुभम, तत्तत् माना उस प्राप्य यानी प्राप्त करके, शुभ यानी अच्छा, अशुभ यानी बुरा। न अभिनंदति यानी अभिनंदन नहीं करता, उसकी प्रशंसा नहीं करता, न कभी नहीं द्वेष्टि उसे द्वेष भी नहीं करता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य माने उसका प्रज्ञा पूर्ण ज्ञान प्रतिष्ठिता अचल, वही पूर्ण ज्ञान में अचल है। अनुवाद देखिए, भगवान कहते हैं इस भौतिक जगत में, अब यहाँ पर जो लिखा है ना, यह सर्वत्र सर्वत्र माना इस संसार के अंदर जो भी उसको मिल रहा है, वो चाहे शुभ हो या अशुभ हो, उसमें उसकी कोई इतनी इंटेंशन नहीं होती, इतना अभी अनभिस्नेह होता है, शून्य स्नेह नहीं होता उतना इस भौतिक चीजों में। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति पर हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवस्य श्रीरूपम् साकृजातम् सहकणरघुनाथन् मितं तं सजीवम् साद्वैतम् सावधूतम् परिजनसहितम् कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादा सहकणललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपीका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचनम गारंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुतदेवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरु भयस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधारं शिवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे श्रीमद् भागवत गीता मात की जय हो। भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए, जैसे भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया था ना कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द सत्य प्रज्ञा, जो जो सत्य प्रज्ञा जो होगा उसको कैसे पहचानेंगे, भगवान ने पूछा था। श्लोक नंबर 54 में भगवान ने अर्जुन ने कहा था भगवान से, अर्जुन उवाच सत्य प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अब उसमें अर्जुन ने चार चीजें पूछी हैं स्थित प्रज्ञ के विषय में। पहला है स्थित प्रज्ञ से का भाषा, कि उसका एटीट्यूड कैसा होता है। तो इसका आंसर भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक नंबर 55 में बताया, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। कि जब वो छोड़ देता है मन से उत्पन्न हुई समस्त कामनाओं को और आत्मा में ही रमन करता है, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। और आगे दूसरा प्रश्न अर्जुन का था, किम प्रभाषेत, स्थितधि किम प्रभाषेत। प्रभाषेत का मतलब है कैसे बोलता है, नॉट लिटरली कैसे बोलता, मतलब जब इसके जीवन में कोई अच्छी या बुरी घटना होती है तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, मतलब कोई भी चीज उसके जीवन में जब कुछ भी हो रहा होता है तो वो कैसे रिएक्ट कैसे करता है। प्रभाषेत, उसको किस उस चीज का प्रभाव कैसा पड़ता है उसके जीवन में, जब उसे कुछ अच्छा मिलता है, जब उसे कुछ बुरा मिलता है, जब कुछ दुख होता है, जब सुख मिलता है, तो उस सुख दुख का द्वंद्वों का प्रभाव उसके जीवन में कैसे होता है उसके विषय में पूछा। तो उसके आंसर में भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक नंबर 56 में बताया, दुखीश्वनु त्विग्न मना सुखीशु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्तधि मुनिरुच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विषित नहीं होता, यानी किसी भी चीज का कोई उसको डिस्टर्बेंस नहीं होता है, प्रभाव कभी भी पड़ता ही नहीं है उसके जीवन में। जितने ही सुख दुखेश्वर द्विग्न मना, जब बहुत सारे दुख मिलते हैं ना तो भी उसको विचलित नहीं करते और सुखेशु विगत अस्प्रहा, और जब बहुत सारे सुख भी होते हैं तो भी उसको कभी उसमें आसक्ति या लगाव नहीं होता है, भय तथा क्रोध से मुक्त होता है, वही स्थित मुनि होता है, क्योंकि इंद्रियों से ऊपर है ना। अब इंद्रियों से और देहात्म बुद्धि से जो ऊपर हो जाएगा तो इस चीजों से उसको कोई डिस्टर्बेंस या फिर आसक्ति नहीं हो सकती। और आगे अर्जुन ने पूछा कि आसित का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कैसे रहता है, इसका मतलब नॉट फिजिकली, यानी कि जब उसके इंद्रिय तृप्ति का कोई भोग उसको प्राप्त होता है या जब नहीं होता है तो वो उसकी मेंटेलिटी कैसी होती है उसके अंदर। अर्जुन ने सब कुछ संक्षिप्त में पूछा है और आज पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं किम आसीत, कि यानी कि जब उसको कुछ भी प्राप्त होता है या नहीं प्राप्त होता है तो वो उसका कैसा रिएक्ट करता है, उसकी मेंटेलिटी कैसी होती है, तो उसका आंसर देते भगवान कहते हैं यह सर्वत्रान विस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम। सर्वत्रान विस्नेह मतलब उसको किसी स्नेह शून्य है, किसी चीज में कोई आसक्ति नहीं है, स्नेह नहीं है, जो कुछ ये भौतिक चीजें हैं इस भौतिक जगत में जो शुभ मिलने मिलता है ना उससे उसको कोई रुचि नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। और दूसरा आगे बताएं शुभाशुभम, अगर अच्छा भी मिल रहा है उसको और बुरा भी मिल रहा है तो उससे वो घृणा नहीं करता है, यानी कि ना अभिनंदति ना द्वेष्टि, उसको इक्वल लगता है अच्छा हो या बुरा, बस ऐसा लगता है कि ये भगवान की कृपा है, जो कुछ हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, सब कुछ में भगवान की इच्छा को देखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी लाइफ चार्मलेस होती है कि ना सुखी होता है ना दुखी होता है, चार्मलेस नहीं, लेकिन पहले ही बता दिया आत्मनिवात्मना तुष्ट है, जो आत्मा में संतुष्ट रहता है, आत्मा में रमण करता है। अब एक चीज, आप एकदम संतुष्ट हो, यानी कि आपको जो कुछ अपना आपका है, जब कोई प्रेमी अपने प्रीतम को प्राप्त कर लेता है, यानी कि कभी ऐसा हो ना जब दो प्रेमी हो उनकी शादी होने वाली हो, ठीक है, अब वो प्रेमी अपने प्रीतम को प्राप्त कर रहा है, उस प्राप्ति में उसको इतना आनंद प्राप्त हो रहा है कि उसमें जितने भी सामने विघ्न आ रहे हैं या जितने भी खुशियां आ रही हैं, जो बीच में जो प्रोसेस हो रहा है ना, तो क्योंकि वो इतना सेटिस्फाई होता है अपने उस प्राप्ति के ऊपर कि उसको जो भी सेंटर में सुख और दुख मिलते हैं तो उससे उतना ज्यादा उसको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, क्योंकि उसको ऐसा लगता है उसको कि मुझे जो चाहिए था वो तो मिल गया, अब बीच में जो अच्छा आ रहा है बुरा आ रहा है वो तो सब मुझे क्या करना है, सिर्फ बस बर्दाश्त करना है, आखिर मुझे जाके उसको प्राप्त करने की खुशी को सेलिब्रेट करना है, तो उसमें जो भी शुभ हो रहा है या अशुभ हो रहा है तो उससे उसको ना घृणा होती है और ना ही इतना ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं होता है। सब लोग बोलते तुम्हें खुश होना चाहिए, खुशी तो वो वाली है कि मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, बाकी बीच में जो सेलिब्रेशन होता है उसमें भी उसको इतना ज्यादा आनंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके हृदय में बस एक ही आस होती है कि मैं कैसे जाके उससे तो उसी तरह से जो भगवत भक्त होते हैं, जो स्थित प्रज्ञ होते हैं, उसको एक बात की खुशी होती है, इस भौतिक जगत में रहकर भी उसकी कनेक्शन जो है वो भगवान के साथ जुड़ गई है, बुद्धि योग के साथ वो भगवान के साथ जुड़ गया है, तो फिर इस भौतिक जगत में जो भी सुख या दुख खुशियां और जो भी है ना दुख उसको प्राप्त हो रहे हैं, खुशियों से ना उसको ज्यादा सुखी सुख मिलता है और ना ही दुखों से वो ग्रहण करता है, बस वो इनको अवॉइड इतना ज्यादा वैल्यू ही नहीं देता है वो। श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है, इसका परिणाम अच्छा हो या बुरा, जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे यानी शुभ या बुरे यानी अशुभ से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। अब संसार है, ये तो संसार में अच्छा और बुरा तो होने वाला ही है, भगवान कहते हैं कि सुख आता है उसके बाद दुख आता है, यही संसार की रीति है, लेकिन जो इन सब चीजों से डिस्टर्ब नहीं होता है, अप्रभावित रहता है, उसे ही भगवान की भक्ति, क्योंकि उसे पता है जो कुछ हो रहा है कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, और कृष्ण मेरे लिए कभी गलत नहीं सोचेंगे, जो प्लानिंग कृष्ण की है वो एकदम परफेक्ट है। तो अगर फिलहाल मुझे कुछ गलत भी लग रहा होता है तो वो भी अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, फिलहाल मुझे गलत जैसा दिख रहा है, लेकिन उसे घृणा नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि हर चीज में कृष्ण की प्लानिंग होती है, तो उसको कृष्ण भावना भावित समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस संसार में है तब तक अच्छा या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वैत से पूर्ण है, किंतु जो कृष्ण भावना भावित कृष्ण भावनामृत में स्थिर है वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि इसका सरोकार कृष्ण से रहता है जो सर्व मंगलमय है। कितना सुंदर और ईवी शर्भोपाल ने यहाँ पर लिखा कि जो संसार है वो तो द्वंद्वों से भरा हुआ है, यानी अच्छाई बुराई, शुभ अशुभ और ऊंच नीच, ये सब इस संसार में शुभ और अशुभ तो होता ही रहता है, किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है अच्छाई या बुराई से क्यों अछूता रहता है, क्योंकि इसका सरोकार कृष्ण से है जो कि सर्व मंगलमयी। अब सर्व मंगलमयी से आपका कनेक्शन जब जुड़ जाता है ना, फिर जो बुरा भी हो रहा होता है आपके जीवन का, जो अशुभ भी होता है आपके जीवन का, जो अमंगल भी होता है वो भी मंगलमय हो जाता है, क्योंकि आपने अपने जीवन के अंदर कृष्ण को सम्मिलित कर दिया है, कृष्ण के साथ अपना नाता जोड़ दिया है। तो कृष्ण उस भक्त को कृष्ण के ऊपर इतना विश्वास होता है, इतना विश्वास होता है कि मेरा कृष्ण सर्व मंगलमय है तो मेरे साथ कुछ अमंगल, कुछ बुरा, कुछ खराब, कुछ अशुभ हो ही नहीं सकता, उस इतना विश्वास होता है कृष्ण के ऊपर, इसलिए जो भी शुभ और अशुभ हो रहा होता है उससे वो बिल्कुल अछूता रहता है, उससे उसको कोई स्नेह नहीं होता है, कोई घृणा नहीं होती है, उसका सरोकार केवल कृष्ण के साथ होता है, उसका संबंध क्योंकि केवल कृष्ण के साथ होता है जो कि सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत में मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। और यहाँ पर समाधि के विषय में बता रहे हैं शर्मा जी, क्योंकि भगवान ने कहा था समाधा वचना बुद्धि तदा योगम अव, कि जब समाधि में आप क्या होते हो, जब योग आपका बुद्धि योग जुड़ जाता है तब समाधि। तो वो योग कैसे जुड़ा, जब योग भगवान के साथ जुड़ जाता है, बुद्धि योग के साथ हमारा कनेक्शन भगवान के साथ जुड़ जाता है, तो फिर क्या होता है, कोई भी चीज, कोई भी दुख, कोई भी अमंगल घटना, कोई भी अशुभ जो है वो हमें डिस्टर्ब नहीं करता है, वो हम को ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है और भगवान कभी बुरा नहीं करते, और यही ज्ञान में स्थिर होता है, इसलिए ना ही वो शुभ कार्य से हर्षित होता है और ना ही अशुभ की प्राप्ति होने से उसको कोई घृणा होती है। और तो अब भगवान ने किमासीत, यानी कि जब वो इस संसार में जब आता है तो जो भी उसके जीवन में घटना होती है तो वो उस घटना में वो कैसा रिएक्ट करता है, या जब उसको इंद्रिय तृप्ति का कोई भोग प्राप्त नहीं होता है तो उसकी मेंटेलिटी कैसी होती है, उसको कुछ ऐसा उस डिस्टर्ब करता ही नहीं है, इसका रिप्लाई किया भगवान ने। और आगे भगवान श्री कृष्ण से जो अर्जुन ने अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है वो है व्रजेतक। व्रजेतक का क्या मतलब होता है, चलता, चलता मना इंद्रियों को कैसे कंट्रोल कर रहा है, यानी कि अपनी इंद्रियों को कैसे एंगेज रखता है, वो सदैव अपनी इंद्रियों के साथ कैसे कार्य कर रहा है, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज डज ही डन फ्रॉम हिज सेंसेस, कि अपनी जो इंद्रियां हैं उसको उसके जरिए क्या करता है। अब जाहिर सी बात है वो जो स्थित प्रज्ञ है उसकी भी वही इंद्रियां हैं जो हमारी इंद्रियां हैं, तो वो अपनी इंद्रियों को कैसे यूज कर रहा है, हाउ डज ही कंट्रोल हिज सेंसेस, वास्तव में ये पूछना चाह रहा है अर्जुन कि अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल कर रहा है वो। और इसका आंसर भगवान श्री कृष्ण देते हैं श्लोक नंबर 58 में, बहुत ही सुंदर श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि जो स्थित प्रज्ञ है वो किस तरह से व्रजेतकिम अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करता है, तो वो बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं ही कंट्रोल हिज सेंस अकॉर्डिंग टू हिज प्लान, कैसे प्लान के हिसाब से, कैसे भगवान कहते हैं, कृपया शब्दों का उच्चारण कीजिए, भगवान कहते यदा संहरति चायम कूर्मोऽङ्गानि नैव सर्वश इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरति चायम् कूर्मो अङ्गानैव सर्वश इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरति चायम् कूर्मो अङ्गानैव सर्वश इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरति चायम् कूर्मोऽङ्गानैव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरति चायम् कूर्मोऽङ्गानैव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा मन जब संहरति समीपता है चायम यह कूर्मो कछुआ अंगानिव अंगों को अंगानिव सदृश सर्वश एक साथ जब जैसे कछुआ जो है वो अपने अंगों को कैसे समेट लेता है इंद्रियां इंद्रियार्थे भी इंद्रियां इंद्रियार्थे या ना इंद्रियों के अर्थ यानी विषयों से तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता जिस प्रकार अनुवाद देखिए जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रियों विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थित है। बहुत ही सुंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। वास्तव में भक्तों इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से कंट्रोल कर पाना यहीं से हमारी आध्यात्मिक जीवन का उदय होता है। अगर सेंसेस पर इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होता तो आध्यात्मिक जीवन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये जो हमारी इंद्रियां है ना हर समय डिमांड करती रहती हैं, कुछ न कुछ इच्छा करती रहती हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना जैसे हम उसको मार्केट लेकर जाते हैं तो हर चीज को देखेगा, चॉकलेट को देखेगा बोला मुझे ये चाहिए, आइसक्रीम को देखेगा मुझे ये चाहिए, झूले को देखेगा बोला मुझे इसमें बैठना है और टॉयज को देखेगा मुझे। तो उसी तरह इंद्रियां जो है ना वो सदैव डिमांड करती रहती हैं और अगर हम इस इंद्रियों की डिमांड्स को पूरा नहीं करते हैं तो वो बहुत डिस्टर्ब कर देती है हमको, बहुत शोर करती हैं और बोलती कि नहीं हमें ये चाहिए एनी हाउ हमें चाहिए। और बताया भगवान श्री कृष्ण ने 44.44 में भोगेश्वरीय प्रसक्तानाम तयापहृत चेतसाम जब इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति हम आसक्त हो जाते हैं तो वो हमारी चेतना को किडनैप कर देता है। इंद्रियां सदैव क्या करती हैं जीव की चेतना को किडनैप कर देती हैं, उसका अपहरण कर देती हैं। और फिर जैसे संसार में होता है ना जिससे किसी को किडनैप कर दिया जाता है फिर डिमांड्स करते कि भाई इतने लाख रुपए दो, फिर इतने अमाउंट देने के बाद उसको छोड़ भी देते ना कभी कभी छोड़ते। लेकिन ये जो इंद्रियां है ना वो जब बुद्धि को हर लेती हैं तो फिर उसकी डिमांड को हम पूरा भी कर लेते हैं तो भी वो बुद्धि को मुक्त नहीं कर देती, वो सदैव उसको अपने और भी तेज शिकंजे में जकड़ती रहती है। तो मुक्ति का साधन क्या है इंद्रियों को कंट्रोल करना, और वो कैसे किया जा सकता है। कृष्ण का नाम है ऋषिकेश, ऋषिक अर्थात सेंसेस और ईश अर्थात स्वामी। ऋषिकेश का मतलब होता है इंद्रियों का स्वामी अर्थात द सेंसेस आर प्रॉपर्टी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जो हमारी इंद्रियां हैं उनके स्वामी कौन है भगवान श्री कृष्ण है। तो अब सेवक वो इसका मतलब है स्वामी वो है तो हमारी इंद्रियां क्या है सेवक है। तो सेवक का कार्य क्या है कि अपने स्वामी की सेवा करे, यानी इंद्रियों को केवल यही अनुमति देनी है कि वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की सेवा में लगे, अन्यथा क्या करे। यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानि व सर्वश, जिस प्रकार कछुए को जब अपनी इंद्रियों से कार्य करना होता है, उसके मतलब का कार्य होता है, तो इंद्रिय अपनी सारी इंद्रियों को खोल में से निकाल देता है, अपने हाथों को, अपनी गर्दन को निकाल लेता है, क्योंकि उसको यूज करना है, और जब यूज नहीं करना है, उसके मतलब का कार्य नहीं है, तब अंदर अंदर डाल देता है कि भाई अभी तुम्हें यूज नहीं करना। उसी तरह से सिद्ध प्रज्ञ क्या करता है, अपनी इंद्रियों को वही कार्य करने की इजाजत देता है जो कि सेवा में लग सके। अब कारणों को सिर्फ तभी श्रवण करने की परमिशन देता है जब वहां पर कृष्ण के विषय में कोई बात। अब कारण जो है वो है ना सुनने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं, लेकिन जहाँ पर निंदा हो रही है, जहाँ पर गलत बातें हो रही हैं, जहाँ जो चीजें कृष्ण से रिलेटेड नहीं है वो बातें होती हैं, तो जो स्थित प्रज्ञ होता है उन चीजों में रुचि नहीं रखता, उन चीजों को सुनता ही नहीं है, अवॉइड कर देता है। और खाने, अब देखो जीवा क्या है, सबसे पहला अगर एग्जाम्पल सबसे बड़ा क्या है, जीवा का। जीवा क्या हर वक्त डिमांड करती है, हर वक्त चाहती है कि कुछ खाऊं, और कुछ खाऊं प्लस कुछ बोलूं, दो कार्य करने के लिए उसकी इच्छा होती है। लेकिन वो जो स्थित प्रज्ञ होता है वो उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों के कंट्रोल में नहीं होता, बल्कि इंद्रियां यानी उसके सेंसेस उसके आदेश का पालन करते हैं। अगर जुबान कहती है कि चलो पिज्जा हट में चलते हैं और खाते हैं, और यदि हम उसका आदेश को पालन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर संसार में यही हो रहा है, सब लोग गोदास बने हुए हैं, लेकिन स्थित प्रज्ञ क्या होता है, गोदास नहीं होता है, गोस्वामी होता है। यहाँ सब गोदास बने हुए हैं, वास्तव में इंद्रियां भगवान की सेवक, क्योंकि भगवान ऋषिकेश हैं, तो हमें क्या बनना है, इंद्रियों के जरिए कृष्ण की सेवा करनी है। वास्तव में भगवान का सेवक बनना है और इंद्रियों का स्वामी बनना है, ताकि इंद्रियों को जो ऑर्डर करें वो वाला ऑर्डर वो माने, लेकिन हम सारा उल्टा कर रहे हैं, इंद्रियों का दास बन रहे और भगवान इंद्रियों का दास बने हुए और भगवान का स्वामी बनना चाहते हैं, क्योंकि भगवान को ऑर्डर करते हैं कि ये करो, मेरी इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए ये कार्य करो, ये कार्य करो, ये कार्य करो। इस तरह से हम खुद गोदास, इंद्रियों के दास बने हुए हैं, और भगवान को अपना दास बनाकर इंद्रियों की सेवा में सहायता करवाना चाहते हैं कि भाई ये प्राप्त करा दो, ये प्राप्त करा दो, ये प्राप्त करा दो। अगर कभी भगवान पूछ भी लेगा कि क्यों चाहिए, तो क्या बोलेंगे कि मैं सुखी रहना चाहता हूँ, इस संसार में सुखी रहना चाहता हूँ, इसलिए सारी सुविधाएं मांग रहा हूँ कि सब मुझे चाहिए, ताकि मेरी इंद्रियां, मेरा शरीर ये भौतिक शरीर सुखी रह सके, और इससे रिलेटेड सारे जो जीव हैं वो सुखी रह सके, इसलिए मैं ये सारी चीजें आपसे मांग रहा हूँ। तो केवल यही हमने अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना दिया। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं, स्थित प्रज्ञ के बारे में बता रहे हैं, यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानी व सर्वश, जिस तरह कूर्म कछुआ जो है वो अपने अंगों को समेट लेता है, यानी कि अपनी इच्छा से करता है ना, कि कंट्रोल हिज सेंसेस अकॉर्डिंग टू हिज प्लान्स। उसी तरह से जो स्थित प्रज्ञ होते हैं, इंद्रियार्थे बिहार, उसी तरह इंद्रियों को उनके विषयों से वो संकुचित कर देता है, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं, प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, यानी अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, उनको इंद्रिय विषयों में लगने नहीं देता है, बल्कि क्या कार्य करता है कि मेरा कार्य, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, तुमको मेरी आज्ञा का पालन करना है। इंद्रियां भले कितना ही डिमांड करती रहे, लेकिन वो उनकी डिमांड को पूरा नहीं करता है, बल्कि अपना जो उसका दृढ़ संकल्प है, उसका जो गोल है, जो उसका उद्देश्य है, उसको पूरा करने के लिए अपने इंद्रियों को कार्य में लगाता है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, किसी योगी भक्त या आत्म सिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके। लॉ, इसका मतलब है कि आप भक्त को किस कसौटी पर परखा जाता है कि वो कितना हद तक अपनी इंद्रियों को कंट्रोल, यहाँ संसार में लोग है ना इंद्रियों को कंट्रोल करना नहीं चाहते, सब सोचते हैं कि हम अपनी मर्जी से खाएं, अपनी मर्जी से चलें, अपनी मर्जी से अपने जीवन को व्यतीत गुजारें, जो कुछ करना है हम अपनी मर्जी से करें, हम मन भगवान में लगा रहे ये। और हम जब उनको बोलेंगे ना कि भाई आपको चार नियम का पालन करना है, जप करना है, यही भगवान की सेवा करनी है अपनी इंद्रियों को, तो बोलेंगे नहीं नहीं ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन हम मन से भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं। लेकिन मन तब तक नहीं लगेगा जब तक इंद्रियां नहीं लगेंगी, क्योंकि इंद्रियां जिस विषय की ओर आसक्त होती है ना, तो मन उसी की ओर आसक्त होता है। अब इंद्रियों को जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, अपनी जिह्वा को भगवान के विषय में बोलने में, भगवान का प्रसाद खाने में, नेत्रों को भगवान के दर्शन करने में, कर्णों को भगवान की कथा श्रवण करने में, और हाथों को भगवान के कार्य, भगवान के श्रृंगार करने में, और चरणों को भगवान के मंदिरों की ओर जाने में, हाथों को भगवान के मंदिर साफ करने में, मतलब जो भी कार्य हमारी इंद्रियों से हम कर रहे हैं ना, वो यदि भगवान के लिए करेंगे ना, तो मन इसी में से किसी न किसी में अटैच हो जाएगा। वरना अगर हम लोग कोई भौतिक कार्यों से, जैसे देख रहे हैं जो भी चीजें, भौतिक एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, तो उसी की ओर मन आकर्षित होगा ना। तो मन को कंट्रोल करने का सरल तरीका जो है वो पहले इंद्रियों से स्टार्ट होता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी को थे, अगर कोई भक्त है, योगी है, तपस्वी है या आत्मसिद्ध व्यक्ति है, तो उसको कैसे परखा जाएगा, कसौटी क्या है, कि वो अपनी योजना से, यानी कैसे वो अपने प्रोग्राम क्या, अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग कैसे अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है, इंद्रियों को वश में कर रहा है। किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। श्री प्रभुपाद जी बोलते ज्यादातर ऐसा करते नहीं है, जो मर्जी आती है, जो दिल करता है, जो इंद्रियां कहती हैं, वही कार्य करते रहते हैं और इंद्रियों के कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर उस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित है, कि मासीत व्रजेत किम। तो भगवान यहाँ विष्णु भगवान जी बोलते भगवान ने उसके अंतिम प्रश्न का, अर्जुन के अंतिम प्रश्न का यहाँ पर उत्तर दिया है कि वो अपनी इंद्रियों के कहने पर नहीं चलता, बल्कि इंद्रियों को कंट्रोल करता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है, वे अत्यंत ही स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। विषैले सर्प होते ना, उनकी क्या इच्छा होती है, सदैव किसी न किसी को डंक मारने की इच्छा होती है। वो किसी के नियंत्रण में नहीं आना चाहते, जो वो जहरीले सांप होते ना, उनको पकड़ना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो नियंत्रण में आना नहीं चाहते और वो सदैव बगैर स्वतंत्रता से अपना कार्य करना चाहते, सबको धसना चाहते हैं। योगी और श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इंद्रियां भी ऐसी है, हमें इंद्रियों को जिस तरह विषैले सर्प जो होते हैं ना, उसको पकड़ने से पहले उनके दांतों को तोड़ दिया जाता है, उनके जहरीले दांत है ना, उसी तरह इंद्रियों को भी कंट्रोल करना होता है, जिस तरह से विषैले सर्पों को कंट्रोल किया जाता है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। हम उन इंद्रियों को खुली छूट दे देंगे तो वो हमें डस देंगी और आध्यात्मिक के पथ से नीचे गिरा देंगी। इसलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जो भक्त है उन्हें इतना प्रबुद्ध होना चाहिए, इतना प्रबल होना चाहिए, इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि वो इन विषैले सर्पों को, यानी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए। अब इंद्रियां तो ख्वाहिशें करती हैं, अपने विषयों से वो दूर नहीं रहना चाहती, लेकिन यदि हम उनके स्वामी बनेंगे ना, तो उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए हमें अत्यंत प्रबल होना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी का आदेश है कि एक भक्त को, योगी या भक्त को, इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए, क्योंकि ये इंद्रियों की आसक्ति, इंद्रियों के भोग की आसक्ति हमें विनाश की ओर ले जाएगी। हमारा जो है ना लक्ष्य, वो कृष्ण प्राप्ति है, और यदि हम इंद्रियों की ख्वाहिशों को पूरा करते रहेंगे तो हम अपने लक्ष्य को कभी नहीं प्राप्त कर सके। और इसीलिए इंद्रियों का संयम करना सबसे पहला कार्य है। इसीलिए हमें बताया जाता है कि जो ये चीजें नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले नहीं करनी चाहिए ना, उनको देखना चाहिए कि कहीं हो तो नहीं रहा है। तो बहुत ही प्रबल एक हमें होना चाहिए, बहुत शक्तिमान होना चाहिए कि हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सके। वो उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देनी चाहिए। ये जो इंद्रियां है ना, उनको ये नहीं, इंद्रियां बोलेंगी ये देखना है, तो जो प्रबल शक्तिशाली जो भक्त होता है ना, मैं तुम्हें नहीं देखने दूंगा, बस नहीं देखने दूंगा, तुम्हें इजाजत नहीं है, तुम्हें स्वतंत्रता नहीं है, तुम अपनी मर्जी से नहीं देखोगी, मेरी इच्छा जो मेरी योजना है, जो मेरे गुरु और कृष्ण का आदेश है, उसके अनुसार देखोगे, तुम अपनी मर्जी से नहीं खाओगी, बल्कि जो मैंने कृष्ण को मैंने अर्पण किया है, जो प्रसाद अभी मुझे खाने के लिए भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, वही खाओगी, अपनी मर्जी से मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगा। तो इतना जिस तरह का सपेरा अपने सांप को कंट्रोल करता है, उसी तरह भक्त अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है, उन्हें कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, जिनमें से कुछ करो और कुछ ना करो, ये संबंध है। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं करता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता, वह तब तक उसका कृष्ण मानवमृत में स्थित हो पाना असंभव है। अब शास्त्र में सारी चीजें बताई गई हैं, जैसे हम भक्तों के लिए एटलीस्ट पांच चीजें ऐसी हैं जो हमें करनी है और चार चीजें ऐसी हैं जो नहीं करनी है ना, जुआ नहीं खेलना, शराब नहीं पीना, नशा नहीं करना, मांसाहार नहीं करना। और करना क्या है? सबसे पहले भक्तों का संग करना है, तीर्थों में वास करना है, विग्रह की सेवा करनी है, संकीर्तन करना है, भागवत श्रवण करना है और 16 माला जप करना। तो जब तक ये हम कार्य नहीं करते ना, देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जब तक हम ये नहीं करते हैं, करो और ना करो, यानी यम और नियम। नियम क्या है? जो हमें करने, यम यानी जो नहीं करने, उनका जब तक हम पालन नहीं करते, इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतते, तब तक कृष्ण भावनामृत में स्थित हो पाना असंभव है। ये भी नहीं लिखा कि हो सकता है अगर वो फिर भी करते करते, लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना ज्यादा शुद्ध है कि शुरू शुरू में जैसे हम लोग सारी चीजों को पालन नहीं कर पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं और पवित्र नाम का जप करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे हृदय से गंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी अपनी इंद्रियों को तो कंट्रोल करना है, जो नहीं करनी है चीजें उनको तो हमें बहुत दृढ़ता से देखना है कि ये चीजें हमें नहीं करनी है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अब भक्त क्या सोचता है? जहाँ पर निंदा हो रही है, जहाँ पर फिजूल कार्य हो रहे हैं, वो उस चीजों को वो बिल्कुल अवॉइड करता है। ऐसा लगता है कि वो चीज घट रही है या नहीं घट रही है, उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वो निर्जीव हो जाता है, लेकिन है ना, उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा होता है अपना। उसको पता है मेरा लक्ष्य नहीं है, तो ओके, मुझे ये सब नहीं सुनना चाहिए, मुझे ये नहीं देखना चाहिए, खाने के लिए स्पेशली कि वो हमें नहीं खाना है, और मुझे उसके विषय में जो कार्य भगवान से रिलेटेड नहीं है, उस कार्य के विषय में मुझे बात नहीं करनी है। क्या फायदा अपना यदि हम इंद्रियों के जरिए भौतिक कार्य ही करते रहते हैं, तो इससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है, तो हम अपने क्या करते हैं, अपने अनमोल मनुष्य जीवन को नष्ट कर रहे हैं। तो फिर ऐसा कार्य वो भक्त नहीं करता है, वो उसको पता है मुझे ये जीवन इतनी कठिनाई से मिला है, केवल कृष्ण प्राप्ति के लिए मिला है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए मिला है, तो इन फिजूल चीजों में उसको कोई आकर्षण नहीं होता है। और जहां बात आती है भगवान की सेवा के लिए, तो उसकी सारी इंद्रियां खुल के कार्य करना शुरू हो जाती हैं, हाथ पैर कान आंखें हर चीज, बुद्धि हर चीज जो है ना, वो भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए फौरन से जाग जाती हैं कि हाँ ये कृष्ण की सेवा है तो मुझे हमें करनी है, इसके लिए फौरन से वो तैयार हो जाता है। वरना अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है, यानी कि फिर अपनी इंद्रियों को ज्यादा एक्टिव नहीं रखता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में ना करके भगवान की सेवा में लगाए। अब अर्जुन ने पूछा था ना कि भाई लड़ाई करूं या नहीं करूं, यानी कि इतना सब जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, तो अर्जुन ये जानना चाहता था कि पता नहीं जो स्थित प्रज्ञ है उसको लड़ाई करनी चाहिए या नहीं लड़ाई करनी चाहिए। तो फिर भगवान उसको बता रहे हैं कि तुम अगर अपनी इंद्र तृप्ति के लिए करना चाहोगे ना तो तुम क्या करोगे जो तुम्हें अच्छा लगे। और तुम क्या कह रहे हो कि मुझे, मैं युद्ध तो नहीं करूंगा, नहीं युद्ध इति गोविंदम, लेकिन आपको अपनी इंद्रियों को खुश करने के लिए नहीं, भगवान को खुश करने के लिए कार्य करना है केवल, क्योंकि इंद्रियां और आप जो है, जो आत्मा है वो भगवान की सेवक है, तो जैसा भगवान आदेश देंगे उसके हिसाब से आपको कार्य करना है, वरना तो कार्य नहीं करना। और भगवान क्या चाहते हैं कि अर्जुन युद्ध करे, क्योंकि भगवान अर्जुन के जरिए से अधर्म का नाश करना चाहते हैं। तो अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह इंद्रियों को आत्मतुष्टि करने के लिए नहीं बल्कि भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कूर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। यानी कि जब भी बस भक्त जो है वो हर वक्त यही सोचता है कि भगवान की सेवा के लिए मैं फौरन से अपनी इंद्रियों को सचेत कर दूं, और जहां पर भगवान की सेवा नहीं है वहां पर अपनी इंद्रियों को संकुचित करके रख देता है कि यहाँ पर मेरा कार्य ही नहीं है, बुद्धि काम, बुद्धि को भी छोड़ देता है, बोले इधर काम नहीं लो, ये बुद्धि आपको संभाल के रखता हूँ, तुम्हारा उपयोग कृष्ण सेवा में करूंगा, भौतिक चीजों में उन्नति के लिए आपको, आपकी सेवा नहीं ले रहा हूं मैं। और अपनी इंद्रियों को भी संकुचित करके रख देता है कि तुम्हें मैं कार्य में लाऊंगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो घर का कोई काम ही नहीं कर, यानी कि वो अपनी बुद्धि को ऐसे योग में लगा देता है कि जब वो कार्य करता है तो सारी इंद्रियों को ये बताता है कि ये जो कार्य मैं कर रहा हूँ वो केवल और केवल कृष्ण की सेवा हो रही है। यानी कि मुझे, क्योंकि कृष्ण ने ये सारी ड्यूटीज प्रिस्क्राइब की हैं, तो ये सारी चीजें मैं जो सारा कार्य सुबह से लेकर अंत तक कर रहा हूँ वो केवल और केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ। याद रखिए, बात याद रखने की है, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज चेंज ऑफ द कॉन्शियसनेस, कि आपको क्या करना है, अपनी कॉन्शियसनेस को भगवान के अंदर लगाना है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसका उद्देश्य केवल और केवल कृष्ण को ही प्रसन्न करना। अब यहाँ पर एक प्रश्न तो उठता ही है कि कैसे करे जीव, ये कैसे कर सकता है कि सांसारिक चीजों से इतनी अनासक्ति, जैसे कितना यहाँ पर बताया भगवान ने कि यह सर्वस्वन यह सर्वत्र न विस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशम, अच्छा आ रहा है बुरा आ रहा है उसमें कोई स्नेह नहीं होता है, और शुभ और अशुभ में ना अभिनंदती ना द्वेष्टि, और कैसे वो अपनी इंद्रियों को संकुचित कर सकता है। अब इंसान है, मनुष्य है, संसार है, इतनी आसक्तियां हैं तो उनकी ओर आकर्षण होना स्वाभाविक है, कैसे कर सकता है। अर्जुन भी परेशान हो गया होगा कि ये कैसे भगवान बता रहे हैं कि कछुआ तो कछुआ है ना, उसकी वो अपनी इंद्रियों को संकुचित भी कर रहा है तो भी अपनी मर्जी से वो खोल रहा है। अब मर्जी माना जो उसकी इच्छा हो रही है, लेकिन हमें क्या करना है, अपनी इच्छा को दबाना है और कृष्ण की इच्छा में सम्मिलित करना है, यानी कि मेंटलिटी पूरी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। तो वो कैसे किया जाए, इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण देंगे श्लोक नंबर 59 में। कृपया साथ रहिएगा। हरे कृष्ण।